बिना स्त्रियों के रह नहीं सकते। दीपू चौरसायन इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, रसातल लोक में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो कृष्ण के लिए अलभ्य हो। सभी अपने आप बिना मूल्य के ही उसके चरणों में उनकी हंसी मुखारविंद को देख करके अपने आप अर्पित कर देंगे। जब लक्ष्मी जी उनके चरणों की उपासना करती हैं, तो हम ग्वाली में जो बनचरी हैं, हमारे लिए बात ही क्या, हमारे लिए दूध क्यों भेजेंगे? हम लोग नहीं समझते कि हम लोगों के लिए ये दूध भेजेंगे। यदि मथुरा में ऐसा कोई नहीं मिलती तब तो हो सकता था कि हमारे चिंता करें, इसलिए हम लोगों की क्यों चिंता करें? जब उनकी इस प्रकार से निष्ठुरता सठता धूर्तता की बात बतलाई गोपियों ने, राष्ट्रीयमती राधिका ने, तो भ्रमर पुनः अपने स्वाभाविक भ्रमरत्व के हिसाब से पुनः उनके चरण कमलों में कमल मान करके प्रवेश करने की चेष्टा की। तो श्रीमती जी ने समझा कि यह अब अन्य विनय कर रहा है, नहीं आप ऐसा ना करें, आप रुष्ट मत हो, मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मान जाइए। उनसे विरोध करना उचित नहीं, उसी के बदले में श्रीमती राधिका जी उसके भाव को देख करके, उसके नंबर का विनय को देख करके पुनः कहने लगे, जिसर जैसे रसिपादम वेद हम चा चुका रही अनुनय विदुष ते अभेद्य दौतर मुकंदात सकृति यह विशिष्टा पत्य पत्तन लोका व्यस्त अकत चेता किं संदेह मसी। हट जादू, पैर छोड़, मत छोड़, हट जा, भाग जा, तुमको बार बार कहते हैं कि हमारे पैरों में पग पड़। अच्छा अब मैं समझी, विसरिए सिरसी पास वेद न हम, अब मैं समझ गई। उन्हें क्या समझ गई? भाव जैसे कह रहा, पूछ रहा है कि क्या समझ गई? ये समझ गई वो कह रहा है भ्रमर लक्ष्मी कोटि, लक्ष्मी लक्ष्मी कोटि निर्माण करनी है, नखर दीते अह कृष्ण की प्रियाएं लाख लाख कोटि कोटि लक्ष्मी भी आपके चरणों की बलिहारी जाती है। देवी सत्यम तम अपराधे, उन्होंने तुम्हारे प्रति, अब तक मैं नहीं समझ रहा था किंतु तुम्हारे बातों को सुनकर के मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच में उन्होंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया। सुंदर तुम्हारा मन है, सरल सीधी है, और तुम्हारे प्रति इतना गंभीर अपराध उन्होंने किया। किंतु देवी क्षमा भी तो आप लोगों का भूषण है, इसलिए आप कृपा करके उनको क्षमा कर दें। मानो इस तरह से वो भ्रमर भनभन कर रहा है, क्षमा, आप उनको क्षमा कर दें। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहा हूं। शिरसि धतम मम पाद पद्म दिशुतास्ते, दौड़ हट जा, चला जा यहां से, एक तो पवित्र और तुम उनका कपट का कपट दूध, हमारे चरणों को छूने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझ गई क्या समझ गई? लक्षा दिखेन न हम पतारिये, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, लक्ष्मी जैसी सीधी शादी नहीं है, वो भोली भाली है, बुद्धि का प्रयोग कम करती है, कल बतलाया था ना उल्लू की सवारी करती है, पहले उनका संग से उनमें अधिक बुद्धिमती नहीं है, वो विचार विवेक कम है, क्या करना चाहिए नहीं है, नहीं हम लक्ष्मी नहीं है जो हमको ये प्रताड़ना करेंगे। तो मुकुंद सकाशात अभ्यत्य, तो मैं समझ गई, क्या समझ गई, तू जरूर मुकुंद का दूत है और उन्होंने तुमको सब कुछ सिखलाया है, चाटुकारी कैसे चाटुकारी की जाती है, चाटुकारी चापलूसी, मीठी मीठी बातों से ठग देते हैं, कोई अंधा राजा है, काला कलूठा है, बड़ा निष्ठुर है, जैसे मोहम्मद गोरी भाग पर आक्रमण किया, उसने हजारों गांवों को उजाड़ करके कत्ल करके सब कुछ लूट लिया, तो उसका मंत्री बड़ा चतुर था, ये धन तो ले किंतु लोगों को काटना मारना ये तो उचित नहीं, प्रजाएं नहीं रहेंगी तो राजा क्या रहेगा, इसलिए उनके पास में गया, बोला जी महाराज आप तो बड़े गुणी आदमी हैं, बड़े विद्वान और विचारक हैं, आपके जैसा विचार करने वाला लोग कम है इस संसार में, बुद्धिमान और सूर भी है। मैंने दो पक्षियों को उल्लू और उल्ला में दोनों पक्षियों को आज बात करते हुए मैंने सुना है, एक बेटा पक्ष का है एक बेटी पक्ष का, दोनों के लड़के में शादी होनी है, उल्लू कहता है हम तब शादी करेंगे जब भी हमको 100 गांव उजड़े हुए तुम देगा, तो उसका भावी ससुर है समधी, वो कहता है 1000 गांव क्या, मोहम्मद गोरी की बचे रहे वो बचे रहे तुमको 1,00,000 गांव दूंगा उजड़े हुए और जन सुनने सबसे हीन दूंगा, सुन करके बड़ा लज्जित हुआ ने? यह है चपलासी चापलूसी, एक चापलूसी अकबर बीरबल का जो बैगन कैसा है बीरबल, उसका फल कैसा सुंदर है, कितना गुणी है, क्या कहें बैंगन की बात, बैंगन विशेष गुण युक्त है, वो लपड़े में रसा में भरसक में पकौड़ी में कचौड़ी में सब में वो चलता है, देखो वो आए नंदी जी आ रहे हैं नंदीश्वर, बैंगन में इतने गुण हैं, सबके साथ उसकी मित्रता है, साजी किंतु है बेगुण का, महाराजा ने कहा अकबर हजूर क्या कहते हैं, कोई गुण नहीं है, कोई इसमें स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बेकार की चीज है, और खाने से बीमारी हो जाती है, नहीं होती है, इससे वो बेगुण है, क्या तुम कहता है, तुम्हारा बात तो कोई ठीक है, हाँ प्रभु जी हमारे बात का ठीक है, कैसे अभी तुमने कहा जैसे इसमें कोई गुण नहीं है, और मैंने कहा जैसे इसमें गुण है, तो कहें बखान करने लगा, हजूर मैं बैगन का दास नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपको प्रसन्न रहा, बैगन को हम प्रसन्न करके क्या करेंगे, यह है चापलूसी। तो मुकुंद सकाशात, मुकुंद माने कौन, मुकुंद बहुत से इसके अर्थ है, मुक्ति सदाती जो मुक्ति देने वाले, और एक है मुक्ति सुखम कुशतम कृत्वा प्रेमानंदम ददाती, मुक्ति को अत्यंत घृणित बतलाकर उसको सिद्ध कर प्रेमानंद जो देते हैं कृष्णचंद्र जी, मुक्ति बेकार की चीज अनुभूति करा करके प्रेमानंद देते हैं, उनका नाम है मुकुंद, और गोपियां इस अर्थ में नहीं, मुखम कुंद इव सदा प्रफुल्लित, अपने मुख को सब समय प्रफुल्लित करके दूसरों को ठगते हैं, ये मुकुंद का है? कैसे ठगा जाता है, कैसे किसी का चीज ले ली जाती है। इनमें श्रेष्ठ है थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस, जैसे मोहिनी ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और उस शंकर की तरफ में देखा, उनका चित्त चोरी कर लिया और भगी तो ये पीछे पीछे भगने लगे। इस तरह से कहते हैं वो मुकुंद हैं, उन्होंने उनको सिखलाया चाटुकारी विनय करना, नय करना, मधुर रूप में बातें करना, ये जरूर उनसे सीखा है। क्यों? अरे लाखों बार हमने उनको देखा कैसे झूठ बोलते हैं। अरे नहीं, मैं वहां गया ही नहीं, तो तुम्हारे चिन्ह नए अंगों के पूछ लिया कभी कहां है, और अन्य विनय करने लगे। यहां तक कि चरणों में शीश नवाया ना, वो क्या है, स्मरकर खंडनम मम शिरसि मंडनम, बस सिर झुका दिया उनके चरणों में। कितनी, एक दो बार, लाखों बार ऐसे उन्होंने किया, उनके बात पर हमारा विश्वास नहीं है। तुम्हें उन्हीं से चाटुकारी, प्रयोक्ति, रचना कौशल तुम सबने उन्हीं से सीखा। दंत दुष्कर्म कैसे किया जाता है ये उनसे तुमने सीखा। हमारे पास में आते थे, हम जानती हैं। जब तक अन्न विनय नहीं रहेगा तब तक दौत का काम नहीं हो सकता। विदुषा, तब एक दौत की बात किया जा जाती है अंगद की। अंगद गया लंका में, खुद गया एकदम अपने सेना के पास से और चला गया एकदम रावण यहाँ पर बैठा हुआ अपने परिषद में सभाओं में बातचीत कर रहा था, मंत्रणा हो रही थी या राम को कैसे हराया जाए। वहां पर पहुंच गए, बंदर को देख करके सब लोग डर गए। वही काला मुख वाला तो नहीं है, सजेझा ये काला मुख वाला नहीं, ये लाल मुख वाला है और लंबी पूछ नहीं है, छोटी सी पूछ है। देख करके, तुम कौन है? मैं आपके मित्र का बेटा हूं। कौन हमारा मित्र? आपको याद नहीं है जिन्होंने कांख में आपको रगा करके 6 महीने तक और तुम उसमें नख से काटने ले, मुख से काट करके उसको खुजली मची तो वो उसको याद नहीं रहेगी हमारे कांख में कुछ है, और ऐसे थोड़ा सा उठा दिया तो उसमें निकल करके भागे। वही आपके जैसे वीर का जो मित्र है बलि महाराज जी, उनका मैं लड़का बालिका। आज देखिए मैं आया हूं कुछ सेवा के लिए, आपके लिए आया, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं। आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, आप मेरी सलाह मान लीजिए, पिताजी को आप दे दीजिए और बाहर के साथ में ले जाइए उनके दिन, नहीं तो आपका वंश सर्वनाश हो जाएगा। सुनते ही वो एकदम बिगड़ा, जब बिगड़ा जब दोनों में रोष पूर्व बातें होने लगी तो इसने कहा कि अच्छा वो तो एक छोटा सा बंदर था, हमारा दूत था जो लंका को जला गया, नौकर चाकर जैसा एक साधारण सा बंदर था, हमने दूत काम के लिए भेजा। मैं सुग्रीव का युवराज हूँ, बलि का बाली का पुत्र हूँ। एक बात करो, तुम्हारे इसमें जितने भी हो एक एक करके हमारे पैर को उठा ले, और नहीं तो सभी मिलकर के उठा ले, मैं सीताजी को आज हार करके चला जाऊंगा। और यदि नहीं उठा सका तो तुम सीताजी को वहां पर ले। अच्छा, मेघनाथ बोले अच्छा मैं उठाऊंगा। मेघनाथ आकर के उठाया पैर, वो जमीन में ऐसा आरोप कर दिया, हनुमान की तरफ दीर्घ में बैठ गए, पैर उठा ही नहीं। मेघनाथ हार गया, तब तब राम का जाच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, 10 मुख लेकर के और जमीन के चरण छूने के लिए गया। अरे रामचंद्र जी का पैर छुआ, हमारे पैर छुआ और वहीं से पृथ्वी को हिला दिया, और हिलाने के साथ ही साथ में रावण के सब 10 मुख सिरों से 10 मुकुट नीचे गिर गए और उनको एक एक लेकर के यहाँ से फेंकता गया, 10 मुकुटों को फेंक दिया। ये 10 मुकुट उसके 10 गुण थे, और तो उसके सब दूसरी दोष थे किंतु 10 गुण थे उसमें। प्रजाओं का पालन, बहुत बुद्धिमान, बहुत बल, तीक्ष्ण मेधा, ये सब उसमें गुण थे। वो भी गुण लेकर के फेंक दिया और रह गया केवल दोषी को, कहे अब मारने में सुविधा होगी राम, ये भी एक दुख है। तो ये सब कहां से सीखे? राम से सीखा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि तुम मुकुंद से ऐसे हट करके बोलना, विनय के साथ में, नम्रता के साथ में दुख का काम करना, तुम उन्हीं से जरूर सीखा है। शिक्षित वक्त तो सर्वम शिलादी कम, हम तुम्हारे जितने सुन गुण स्वभाव चरित्र हैं, मैं समझ गई पहले ही। जिस प्रकार से रसोई बनाते समय एक हड़िया में चावल पकाते हैं और एक कलछी से चावल निकाल करके ऐसे करते हैं, समझ जाते हैं कि सब चावल, ऐसे ही मैं समझ गई तुम्हारे शील स्वभाव चरित्र को सब तुमने उनका अनुकरण किया है, उनसे सीखा है। इसलिए बार बार मना करने पर भी तू मानता नहीं है, हमारे चरणों में सिर नवाता है। ननु स्वामी ने कहा जा, अरे स्वामी जी ऐसा मत कहें, तुम्हारे जो प्राण कोटि से अधिक प्रिय जो कृष्ण है, तब माने कृष्ण के प्राण कोटि प्रिय तुम हो, ऐसा हमने सुना है। बार बार उनके साथ में रहने से आपकी सब समय प्रशंसा वो करते हैं, और इसी नाते आज मैं आपके चरणों में शीश नवा रहा था बार बार। उनके कोटि कोटि प्राण आपके चरणों में न्योच्छावरित हो जाते हैं, प्रत्युत्तयामय तीर्थेन, समझे? किंतु मैं तो जैसे सब तीर्थ माने क्या मैं तीर्थ है, मैं आपका प्रिय हूं, उनका भी प्रिय हूं, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। मैं आपका भी भला, आपकी भी भलाई और उनका भी कल्याण में चाहता हूं। इसलिए स्वक से तदर्थम विशिष्टानि, इसलिए दोनों में सुलह नामा हो जाना ही अच्छा है, पैर विरोध को अधिक बढ़ाना उचित नहीं। मैं जानता हूं कि आपके प्रति कितना उनका स्नेह और प्रेम है, इसलिए उनसे बिगाड़ मत कीजिए। ये सुनकर के कुछ और तन गई भाव है इनकी, हमको शिक्षा दे रहा है। तेरे जो मनीब हैं, प्रभु हैं, वही हमको शिक्षा नहीं दे सके, अब तू हमको शिक्षा देने आया है। अरे तदर्थक आज हमारी क्या दशा है? तदर्थक उनके लिए हमने अपने पुत्रों को, अपने पतियों को और पति लोक को इस जगत में सब कुछ को हम लोगों ने त्याग कर दिया उनके लिए। जानता है तू, तू तो नया सज करके आया है उनका सखा दू, हम लोगों ने उनके लिए क्या नहीं किया? माता पिता, माता पिता को छोड़ दिया, कुल धर्म लज्जा सब कुछ उनके लिए हमने छोड़ दिया। यहाँ पर कह रहे हैं इसे, ये ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ये कह रहे हैं अपत्यानी, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, और कोई कहती है माता पिता को छोड़ दिया। इसमें विचार करना चाहिए, गुप्तों के मुख से कोई भी असंजक बात नहीं निकलेगी, सब तर्क युक्ति इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठित, युक्तिपूर्ण और शास्त्रीय हो, कभी भी असंजक बातें उनसे नहीं निकले। इसलिए जो कह रही है वो ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जो पति क्यों कहा है, अपत्य क्यों कहा, माता पिता क्यों कहा, पति केवल कहती ये नहीं, रात के समय में कृष्ण ने मुरली बजाई पूर्णचंद्र की, और उस समय में सारी गोपियां उस बंसी की ध्वनि का पीछा करते 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 यहां पर कि कृष्ण निर्जन में जमुना के किनारे बंसी बट पर खड़े थे, मानो अपने अपहित हृदय को मन को खोजने के लिए दौड़ी। बड़े वेग से कपड़े उनके जो लटक रहे हैं नीचे नीचे, उस समय का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कैसे वो दौड़ करके आए, एक एक दूसरे को देखी नहीं। उस समय में उन्होंने उनमें से कुछ ऐसी थी जो अब उनके दल में है, उस समय में जिनको पुत्र था, पुत्रवती थी और कृष्ण के प्रति पूर्वराग भी था, बंसी वह सुनी और बेचैन हो गई, वो भी चली। तो जिनके बच्चे नहीं थे, किशोरियां थी, अभी नवविवाहिता थी, वो तो झट निकल गई जोग माया के प्रभाव से, और जोग माया ने इन लोगों को वहीं पर रोक दिया। किनको? बच्चे वाली को। क्यों रोक दिया? ये भक्ति राज्य में ये ठीक नहीं है, भक्ति करेंगे किंतु किस राष्ट्र इत्यादि में कृष्ण से सम्मिलित नहीं हो सकते, इसलिए जोग माया ने रोक दिया। और फिर जब ये अपत्य का भाव माने पुत्र का भाव और जो कुछ भाव था वो सब दूर हो गया, कैसे कृष्ण को हृदय में आलिंगन किया, उनके जितने मंगल हैं सब मंगल क्षीण हो गए। मंगल माने क्या? जो पति उनको आदर करते थे, पतियों के प्रति इनकी श्रद्धा थी, बच्चों के प्रति थी, ये मंगल सब दूर हो गया। और तीव्र बृहताप भूता अशुभा, और तीव्र बृहताप से उनके जो अंदर में कुछ मलिनता थी वो सब थी। तो क्या मलिनता होगी? अपराध, नशाली कुछ नहीं, भाव, एकांतिक कृष्ण में जो होने का था, पहले पतियों में भी था, इनमें भी, किनका? जिनको बच्चे हैं। इसलिए जब वो धुल गया तो मानो कायाकल्प हो गया, और तब फिर वही रास्ते में चलिए, उनको देख करके ये कह रही है। कौन? श्रीमती जी कह रही है, ये साक्षी ये है। पुत्रों को भी छोड़ दिया, और माता पिता किस लिए कहा? पति को कहने से हो जाता नहीं, जो अभी कुमारियां हैं जिनकी अभी शादियां नहीं है, धन्य इत्यादि बहुत सी ऐसी हैं जो अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह के योग्य हैं, और उसी समय में कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग हो गया, और वो नित्य सिद्धाओं के संग में कात्यायनी की पूजा कर अंत में वो भी सम्मिलित हुई हैं। तो उन लोगों के लिए माता पिता इत्यादि का कहा, अस्माभि पतय धन्यादि कन्या भी, हम लोगों ने अपने पत्नियों को और धन्य इत्यादि ने पित्रादि सबको इसी रूप में समझना चाहिए, कोई संदेह नहीं आने चाहिए गोपियों की बातों में। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी खोल करके बतला रहे, गोपी जो व्यस्त, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, लोक लज्जा नहीं छूटती। द्रौपदी का जब तीर्थहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी का कोई गला काट देता वो अच्छा होता ना, उसको नग्न करके दुर्योधन के जंग पर बैठा देता, उनके लिए कौन सा वर्णीय था? मरना, लोक लज्जा छूटता नहीं। इसलिए यदि बीस होती तो बीस खा लेती, तलवार होती तो अपने को काट देती, किंतु ये चीजें थी नहीं, बस कृष्ण एकमात्र अवलंबन रह गए। इसलिए प्राण छोड़ना सहज है, राजस्थान में वो जौहरी व्रत एक होता है, जौहर व्रत, जिसमें उनके पति लोग लड़ाई में चले और वो लोग चिताएं अलग से साज रही थी, यदि हार गए वो लोग मारे गए तो आग में जल मरेंगे, और यदि जीत करके आ गए जब देखेंगे तो कोई बात नहीं। इसलिए पहले से तैयार करके चिता और धड़क रही थी आग, पति सब उनके मारे गए, जब मुसलमान लोग आए तो बस उनके देखते देखते ही आग में सब फूट पड़ी, मर गए। लज्जा एक ऐसी चीज है, उस लज्जा को हमने छोड़ दिया, और ऐसे हमारे प्रति अकृतचेता हमें छोड़ करके बिना दोष के चले गए, सुध एक बार नहीं ली, ऐसा अकृत व्यक्ति अकृतज्ञ न विद्यते, आज तक कोई जन्मा नहीं ऐसा अकृतज्ञ, उपकृत से तो कोई उपकार हमारा नहीं किया, आज हम उन्हीं के मारे धर्म कर्म नष्ट होकर के आज हम वनों में बिलबिला रहे हैं, ये किसके लिए जानता है? तुम तो बड़ा अन्न विनय कर रहा है, यदि तुम नहीं तुम जानते तो तुम ऐसा नहीं करते। नु अहो नु नु संधे अस्मि अहो इद्रिशे अस्मिन कठोर। अहो इतना कठोर, इसे संधि की बात हम नहीं कर सकती, सुलह की बात नहीं होगी, इससे हमारा क्या प्रयोजन? यदि वो हमको छोड़ सकते हैं तो हम इनको नहीं छोड़ सकते? जरूर छोड़ दे। नहीं नहीं पैर छोड़ो जाओ, कह दो जी आप संधि नहीं होगी। सोलुंठ वाक्य है, सोलुंठ माने क्या? गीता में गूढ़ रोष है, गूढ़ रोष को कहते हैं किसको? ऊपर से मीठी मीठी भी बातें कर रही है और भीतर में गूढ़ रोष भरा पड़ा है। चंद्रावली जी का एक उदाहरण उज्जवल नीलमणि ने दिया है, कृष्ण कहीं से आए खंडित के बाद में, खंडिता होने के बाद में आने की बात थी, नहीं आए और अन्न विनय करने लगे। उस समय में उनके ये अंगों को और लक्षणों को देख करके कह रहे हैं आइए पधारिए बैठिए, नीलोहित रुद्र जी आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। हंस करके ऊपर से नहीं मालूम होता है कुछ, किंतु ये सब ताना है, सीधी सरल बातों से भी ताना अधिक वो बाण उसका पहुंचता है। उनके साथ में कृष्ण के साथ में मधुमंगल या सुगल था। मैं कहा जी भाई ये तो आपको बड़े प्रेम से बातचीत कर रही है, कृष्ण ने तुम नहीं समझोगे, आज इतना गूढ़ इनका अभिमान हमारे प्रति है, दूसरा विश्व में कोई नहीं समझेगा, ये हमारे प्रति आज बहुत असंतुष्ट हो रही है। तरह तरह से मनाने की चेष्टा की तो फिर यही जाकर के इसको कहते हैं सोलुंठ वाक्य। देखो आदि शब्द आदि निर्दय अक्षर बहुत निष्ठुर परद्रोही प्रेम शून्य ये तुम्हारे प्रभु जी हैं। खूब गूढ़ कथाओं को बोलना, आक्षेप करना, आक्षेप माने निर्दोष निष्ठुर इत्यादि, और अकृतज्ञ उनको बतलाना, इनको कहते हैं संजल्प। ये जल्प ये चौथा या पांचवा हुआ। वो अपने स्वाभाविक गति से उनके चरणों में प्रवेश करने की बार बार चेष्टा करता है और उसको वो दूर भगा रहे हैं। थोड़ी देर में आकर के पुनः उनके चरणों में फिर गिरा। अब इस बार कहती है मृगयूरिव कपिंद्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रीम कृत विरूपा स्त्रीजीत कामयानम बलिमपि बलिमत्वा वेशयद्धं चवतज तदलमसित सख्यैर कपिंद्र। तू जानता नहीं है, अभी छोड़ता नहीं हमारा पैर, बार बार गिरता है। उन्होंने कह दिया था जैसा न विनय करना, छोड़ो जल्दी से जाओ यहां से। उन्होंने सोचा कि ये कह रहा है, नहीं नहीं वो अत्यंत पवित्र है, तुम्हारे तुम लोगों के प्रति गाढ़ अनुराग है, नहीं तो हम तो भेजते किस लिए, इसलिए आप उनसे संधि कर ले ही अच्छा है। मैं तुमको एकदम निर्लेप देखता हूं, परम पवित्र देखता हूं, आपके प्रति कितना गाढ़ अनुराग है देखता हूं। इसको सुन करके और वो कुछ क्षुब्ध उठी, भगवानों का रहा है, अरे बड़े कोमल चित्त के हैं, बहुत उनका चित्त कोमल है। मैं जानता हूं तुम्हारे नाम ले लेकर के रात भर रोते हैं, उनको चैन नहीं आता। कहा गोपियों ने कहा जैसे हाँ दादाजी का, हाँ उनको चैन नहीं है तो मुझको भी पता है, बिना हमारी जाति को उनको चैन ही नहीं रहती। वो कोमल मन वाले हैं, सुनो मेरी बातें, और सब समय आप ही का ध्यान करते हैं और सब लोग सब समय आप ही की चर्चा करते हैं। इतना सुनकर के कुछ रोष हुआ श्रीमती जी को, अरे दू हट, मैंने पहले तुमको कहा जिसका चला जा, हमको क्यों तंग करता है तू? और बात चीन है, और बात चीन मैंने क्या, मूर्ख और नया, नए नवीन कोई सखा हो, नवीन कोई स्त्री हो ऐसा, और उसमें मूर्ख हो उसको अरबाचीन कहते हैं। अरे हमारे तो बहुत दिनों के मित्र है ना, बहुत दिनों के मित्र है, मैं हम लोग उनको 14-15 वर्षों से जानती हैं, 16 वर्ष से जानती हैं, और तुम आज आया है ना, आज उनसे सीख करके आया है। हम उनके तत्व को नहीं जानती है मूर्ख अरबाची, तो हमको उनको सिखलाता है जो बड़े कोमल प्रवृत्ति के हैं, बड़े प्रेमी हैं, आप लोगों के प्रति उनका गूढ़ अनुराग है, हम नहीं स्वीकार करती। न केवलम स अयस्मिन नैव जन्मनि कठोरा, वो इस जन्म में नहीं, ये श्याम जितने रंग के वाले जिस सभी समय में सत्ययुग त्रेता द्वापर में हूं। और हमने तो सुना है ये यही जो धूर्त है श्याम, पहले जन्म में त्रेता युग में ये राम थे, और उसके पहले सत्ययुग में वामन थे, तो इनकी पिछली कार्रवाइयों को करतूतों को हम जानती हैं। इसी जन्म में कोई कठोर हुआ, निर्दय हुआ, निष्ठुर हुआ नहीं, और अकृतज्ञ है ऐसा नहीं, किंतु पूर्व पूर्व जन्मों में भी हमने सुना है पूर्णमासी जी के मुख से वो बतलाती हैं, वो तो भविष्य जानने वाली देवी हैं, इसलिए उन्होंने बतलाया था कि ये जो काला है ये पहले और भी काला कितनी बार हो चुका है, और कभी कभी पीत भी हो जाएगा, सब रंगों को अपने अपने समय पर यह धारण करता है। जदा क्षत्रिय जात, अभी तो गोकुल में, पहले जबकि वो क्षत्रिय था, रामचंद्र के रूप में इस जगत में जन्मा, और क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके, क्षत्रिय धर्म अर्थात दीनहीनों की रक्षा करना, शुद्ध न्याय करना, साधु संतों को तंग नहीं करना, ये सब उनके क्षत्रिय के धर्म होते हैं। उसने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया और मृगुन की भांति, शिकार की भांति, कपियों में जो इंद्र हैं बादी का विरोध करके उसका वध किया, वो भी छल से वध किया, आमने सामने लड़ लेते तो कोई बात नहीं, बलि के सामने कोई भी लड़ नहीं सकता था, उसका वर था ब्रह्मा जी का कि जो कोई लड़ने आएगा उसका आधा बल इनमें चला आएगा, तो आधा में से तो बराबर हो गया, और इसका जितना बल है वो तो रहेगा ही, इसलिए उसे जेढ़ा आदमी हो जाएगा, इसलिए उसको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए बड़े बड़े रावण प्रभृति उसे हार गए, इसलिए सुग्रीव जी उससे डरते थे, यदि लड़ने जाएंगे हमारा बल ले लेगा और हमको मार डालेगा, इसलिए छिप करके मारा इन्होंने। उसी के लिए करे निर्दय गुप्त सन्निधान, अधर्म कथा भी तदुपाख्यान गया, इन्होंने जो मारा बलि को छल करके मारा, किस लिए मारा, उनका क्या हरण किया था, कुछ भी तो नहीं, उसे कोई इसका संबंध ही नहीं था, पर नहीं हमारे मित्र के पत्नी को हरण कर लिया और राज्य ले लिया, तो मित्रता के पहले ना पीछे, तथा के पहले तो उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया, उनकी स्त्री चल गई चोरी, बिना स्त्री के तो रह नहीं सकते, अब एक और स्त्री चाहिए, नहीं मिले तो, और नहीं तो उसी को लाना है, इसलिए उनसे मित्रता की, अग्नि की साक्षी देकर। जिस समय में दोनों में बाली में और सुग्रीव में लड़ाई होने लगी, रामचंद्र जी ने अपना एक गले की माला उनको दे दी, कहा ये यही चिन्ह रहेगा, नहीं पहले नहीं, पहले ऐसे ही लड़ रहे थे, और कहा जाओ उसको मारूंगा। जब युद्ध होने लगा तो उसका आधा बल ले लिया, और जब उसको परास्त करने लगा तो रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा मारा प्राण नहीं लिया केवल, ये जैसा भी भाई है मारेंगे नहीं, डर दिखला दे। वो रोते कलपते आए रामचंद्र जी के पास, अच्छा आपने प्रतिज्ञा की थी ये मारेंगे और मारा नहीं, यदि मैं मर गया होता तो। कहने मित्र खेद है, तुम दोनों देखने में एक ही समान, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक समान रूप एक समान वीरता, इसमें निर्णय नहीं कर सका, यदि तुम ही कुमार देता तो, यदि बाढ़ लग जाता, इसलिए अब माला ले लो और सब जाओ। तो अपनी माला एक पहना दी, फिर उनको मिला और एक पेड़ की आड़ से धनुष बाण लेकर के उनको मारा, वो गिर गया। जब मरने में नहीं था रामचंद्र संग आए, फिर इसने पूछा कि आप लोग तो बड़े लोग धार्मिक कहते हैं और क्षत्रियों में परम धार्मिक, आपने मुझको अधार्मिक की तरह में क्यों मारा, क्या कारण, आपने मैंने आपकी क्या चोरी की, आपके साथ में कोई शत्रुता नहीं थी, मित्रता भी नहीं थी, क्यों मारा? तो उन्होंने एक युक्ति बना करके अपने तरफ से ये कहा, अनुज बधु भगनी सुत इन्हें बिलोक, ये कन्या है चारों, इनके प्रति जो कोई कुदृष्टि करता है मैं उसे मार डालता हूं। तो सब जगत का वो कहीं आप राजा हैं तो अपने राज्य के लिए, ये तुम्हारे राज्य में है, कोसला के अंतर्गत अयोध्या के अंतर्गत है, ये सारा भी सही उन्हीं का है, क्यों मार? बाली ने पूछा, तो उन्होंने एक तर्क दिया, तर्क ऐसा है, एक मेमना थी, मेमना मैंने भेड़ का बच्चा, वो नदी में पानी पीने गया, इतने में एक बाघ ने उसे देखा, बाघ उसके पास आ गया, अब खाने के लिए तैयार है मारने के लिए, तो मेमना ने कहा मैंने तुम्हारी क्या बुराई की ये हमको मार रहे हैं, तुमने पानी गंदा कैसे किया, पानी गंदा किया, मैं पानी पीने आ देखा जो पानी गंदा कर रहा, तो मेमने ने कहा जैसे तुम ऊपर की तरफ में हो, उधर से पानी बह करके आता है, मैं यहाँ पर पानी पी रहा हूँ, तो इधर का तो गंदा हो सकता है, किंतु ऊपर का गंदा कैसे, नहीं है तुमने किया मार करके खा गया,
तेरे बाप ने किया,
हाँ तुमने नहीं किया, तुम्हारे बाप ने किया था, ऐसे ही ये सीना जोड़ी है, चोरी तो है भी है, चोरी किंतु सीना जोड़ी, ऐसे ये रामचंद्र है। देखो बंदरों को कोई मनुष्य मारता नहीं, उनका नाम है ना बानर वानर, इसलिए मनुष्य को मारने से जो हत्या का पाप लगता है उसको भी यही लगेगा, किंतु उन्होंने इतने निष्ठुर हैं क्षत्रिय धर्म को ताक पर रख दिया, और निष्ठुर की भांति क्षत्रिय धर्म के विपरीत अधार्मिक की भांति उसे मारा। बैग भी ऐसा नहीं करता, बैग सबको मारे, पक्षी की पतंग जानवर से लेकिन बंदरों को नहीं मारता, इन्होंने उसको भी जलांजलि दे दी, अप्राप्ति लुप्त से बात नहीं, बैग वो बानरा नहीं मनती है, बैग भी बंदरों को बात नहीं करता है, इसलिए क्यों उसका मांस खाया नहीं जाता, हिरण होता मार दिया, अच्छा मैं मार मार करके उसका मांस खाया, इसका मांस क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। और देखो और बताऊं, गोपी कह रही है श्रीमती जी, स्त्री अब सूर्पनखा उनके पास में आई, क्यों आई, अरे तुमने राज्य छोड़ दिया तो अपनी दीदी को साथ में क्यों लिया, स्त्री जीता बिना हाथ में हाथ मिलाए चल नहीं सकते, क्यों? और कहते हैं कि मैं स्त्री जीत हूं, स्त्रियों को मैंने जीत लिया है। स्वप्नखा ने आपको देखा, जटाजूट बांधे तीर धनुष यहां पर अत्यंत सुंदर स्वरूप दुर्बादल श्याम, चंद्र भी जिनका मुख देख करके लज्जित हो जाए, आंखें बड़ी बड़ी कमल नक्के समान, इतना सुंदर रूप देकर के वो मुग्ध हो गई तो क्या हो गया, पशु पक्षी की पतंग भी उनको देख करके मोहित हो जाता है। तो ये सूर्पनखा का दोष है ना, उनके रूप को था दोष, दूसरे के पास क्यों नहीं गई? और लोक लज्जा छोड़ करके आप ही को चाह, आप मेरे पति हैं हूं और मैं आपकी पत्नी बनू, तो स्त्रियां ऐसा प्रस्ताव कर सकती हैं क्योंकि काम में मुग्ध हो गई हैं, किंतु इसका मूल कारण आप हैं, आपने क्या किया उस स्त्री के लिए, बचाने के लिए इस स्त्री का वध किया जो आपको चाहती, इसलिए स्त्री जीता कामयानाम, वो पति रूप में चाहती है और एक दूसरी स्त्री के लिए आपने दूसरी स्त्री का नाक कान का, अरे मार देते स्त्रियों का या पुरुषों के लिए क्षत्रिय के लिए ये अपराध है, यदि किसी स्त्री पर हाथ उठाए या कोई भाग रहा है उसके ऊपर में अस्त्र शस्त्र, ये वीरों का काम नहीं। तो आपको पति के रूप में जाति कह देते कि भाई भी शादी नहीं कर, ना कान क्यों काट लिया कि आप दूसरे भी से शादी न करें, इसे कोई प्रेम व्यवहार नहीं इसलिए काट लिया, कितना निष्ठुर कितना निर्दय। दूसरी स्त्री ने कहा प्रिय ये हरण हमको चाहिए, जीवित यदि पकड़ लाओ तो अच्छा है, मैं कैकेयी मैया को दूंगा उपहार, और यदि नहीं पकड़ा गया तो मार करके भी ऐसे इसका मृगछौना बड़ा सुंदर होगा, ये भरत को दूंगा, उसमें बैठ करके आसन जम नाम नियम प्रणायाम इत्यादि करेंगे, इसको किसी प्रकार से चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा जे नहीं मत जाइए, ये हमको इसमें षड्यंत्र मालूम पड़ता है, ऐसा मृग होता ही नहीं। पत्नी स्त्री ने कहा जाए चुप रहो देवर, तो सुन उसके कहने से वो चुप हो गई और उसके कहने से वो चल पड़ा। गति क्या हुई? तो ऐसे कपटी से धूर्त से हमें कोई संबंध नहीं है, हम संधि नहीं करेंगे। अच्छा तुम ही बतलाओ, ये तो क्षत्रिय रहा, क्षत्रिय में किसी के प्रति ऐसा अन्याय भी हो सकता है, किंतु ब्राह्मणों पर कैसा अन्याय किया? कश्यप का पुत्र बना, वो भी धोखे से घर में आ गया अदिति के, और घर में आकर कहीं निकल पड़ा, एक दिन की भी देरी नहीं हुई, और कुछ दिनों के बाद में छल वेश बना करके छद्मवेश 52 अंगुल का केवल और चला गया परि महाराज के दरबार में, और हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहा परि महाराज ने क्या चाहिए? तो चुप रहे, दो बार कहा चुप रहे, तीस बार तो चौथे बार फिर उन्होंने कहा कि बोलिए आपको क्या, मैं आपकी सेवा करूं? तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी के पिताजी प्रह्लाद महाराज आपके वंश में कैसे दिव्य रत्न हो गए, बलि बाण विश्व की विश्व परवा ना कौन, ये सब बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं जो अपने वचन को कभी नहीं छोड़ा, आप उसी वंश में आए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अपने वचन को आप तोड़ेंगे नहीं, अतः तू बागदान देकर के फिर से मोड़ेंगे नहीं, सब तरह से कह करके भैया ये बड़ा ये लड़का तो छोटा है तो बुद्धि तो बड़ी विशाल है ये, अच्छा अच्छा तुम मांग लो कुछ, हमको 3-5 जमीन चाहिए, 3 पैर खिलखिला करके हंस उठे, तुम छोटे तुम्हारा खरबाकृति बुद्धि भी खरबाकृति, अरे तुम सुंदर पत्नी मांग लेते, अष्टपराओं मैं दे देता, राज्य का राज्य मांग लेते दे देता, जो कुछ भी चाहता वही दे देता। तुम तीन हाथ जमीन चाहते हो, तीन पाद जमीन क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, ब्राह्मणों को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए हमको तीन ही पद भूमि चाहिए। खूब पक्का विश्वास जमा लिया, तो ये अच्छी बात है। तीन पद भूमि संकल्प कीजिए, संकल्प किया, शुक्राचार्य ने बाधा दिया तो उनकी आंख को फोड़ दिया। इसके बाद में संकल्प करने के बाद में छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर में छोटी चीज रह सकती है, किंतु छोटी चीज के भीतर में बड़ी चीज रहे, ये बड़ा आश्चर्य है। मैं उसने न जाने क्या किया, अपने छोटे से शरीर से इतना लंबा पैर बनाया, अद्भुत, और सारे विश्व को, पृथ्वी को एक डग से माप लिया। बलि महाराज जी ने ये तो नहीं कहा ये तुम नया पैर निकाल करके मापोगे, तुमने जिस रूप में बर मांगा था उस रूप में हमने बर दिया है, तो तुम छोटा है तो छोटे पैर से मापो, तब तो देंगे, ये कह सकते थे। किंतु बलि महाराज ने बड़े उदार, दूसरे पैर से उन्होंने ब्रह्मांड तक ढोर भुआ तो हम अजन तप सत्य अतल तलातल पाशाल रात आसल, ये सबको दूसरे पैर से एकदम पूरा मार कहा, जब कहाँ पैर रखो बतलाओ, और नहीं तो तुम भ्रष्ट होगा अपने सत्य बात पर। गोपियां कह रही है कितना धार्मिक,